आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनविता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 14, एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो ये मन्नू भंडारी का आप एक आत्मकथा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मकथा शैली में अपनी कहानी, अपने जीवन की कुछ घटनाओं का इसमें वर्णन किया है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि लेखिका ने अपना थोड़ा सा परिचय दिया है, अपने परिवार का परिचय दिया है और बताया है कि उनके जो माता पिता थे कितने विपरीत स्वभाव के थे। जहां पिताजी अहमवादी और कठोर और क्रोधी स्वभाव के थे, तो वही माँ बहुत ही शांत और सहनशील व त्यागी स्वभाव की थी। ठीक है, और वो कहते हैं कि कहती है कि वो काली थी, दुबली थी, इस वजह से ही उनकी बहन की हमेशा प्रशंसा की जाती थी। उनकी तुलना होने के कारण उनमें हीन भावना ने जन्म लिया, जो कि आज भी कुंठा के रूप में कहीं ना कहीं मन में है। और इसी वजह से अगर वो नाम भी पाती हैं, सम्मान भी पाती हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो एक हीन भावना ने उनके अंदर बचपन से ही जन्म ले लिया था। फिर उन्होंने बताया कि आजकल महानगर संस्कृति में लोगों को अपने आसपास कौन रहता है ये भी नहीं पता होता, लेकिन उनके समय में पड़ोस कल्चर था। आसपास के सारे घर मोहल्ले के एक परिवार की तरह रहते थे। और इसी वजह से लेखिका कहती हैं कि शुरुआत की जो उन्होंने कहानियां लिखी, उसमें लगभग कई किरदार उनके आसपास के ही थे, जो उन्होंने अपने मोहल्ले में देखे, है ना, जिनके साथ उन्होंने अपने जीवन के कुछ पल बिताए, या फिर जिनके जो व्यक्तित्व था वो लेखिका के मन पे छाप छोड़ गया, है ना। तो अपने अनुभवों के आधार पे उन्होंने अपने पात्रों को लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 95 पर आ जाइए। आज हमें पेज नंबर 95 के लास्ट पैराग्राफ से शुरू करना है। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुवर्ण गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। अब वो क्या कहती हैं कि बता रही है उस समय लड़कियों के लिए शादी की क्या योग्यता थी, मतलब अगर लड़की की शादी हो जानी चाहिए तो वो 10वीं मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, 16 साल की होनी चाहिए, तो बस उसकी शादी कर दो, ये उस समय अनिवार्य योग्यता समझी जाती थी। तो वो बताती हैं सन 1944 में सुशीला, जो कि उनकी बड़ी बहन थी, जो लेखिका से 2 साल बड़ी थी, उसने ये योग्यता प्राप्त कर ली। मतलब उनकी 10वीं कक्षा भी पूरी हो गई थी, वो 16 वर्ष की हो गई, तो उनकी शादी कर दी गई और फिर वो कोलकाता चली गई। उनके जो दोनों बड़े भाई थे वो भी आगे बाहर पढ़ाई के लिए चले गए। तो लेखिका कहती हैं जैसे ही इनकी छत्र छाया हटी, यानी घर में अब वो अकेली रह गई क्योंकि वो सबसे छोटी थी, तब उन्हें नए तरीके से उन्होंने अपने आप को जाना, उन्हें अपने वजूद का एहसास हुआ और पिताजी का ध्यान भी अब क्योंकि एक ही बच्चा उनके घर में बचा था तो लेखिका पे आ गया। अब वो कहती हैं कि जिस उम्र में सोचा जाता है कि लड़कियों को स्कूली शिक्षा देने के साथ साथ एक सुगम गृहिणी, है ना, यानी बहुत ही अच्छी गृहिणी बनाने के गुण उसे दे दिए जाएं, पाकशास्त्री यानी अच्छा खाना बनाना सिखा दिया जाए, इस तरीके के नुस्खे ढूंढे जाते थे, लेकिन पिताजी क्या सोचते थे, उनका कहना था कि इसको रसोई से दूर रखो। उन्हें रसोई एक भटियार खाना लगता था, भटियार खाना यानी जहाँ भट्टी जलाई जाती है। उन्होंने कहा अगर कोई रसोई में ही लड़की रहेगी तो अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभाओं को उसमें झोंक देगी, यानी सिर्फ खाना बनाना का उसका काम रह जाएगा और वो अपने आसपास दुनिया में कुछ न सीख पाएगी ना अनुभव इकट्ठे कर पाएगी। और उन दिनों क्योंकि लेखिका के जो पिताजी थे उनकी पहचान काफी दूर दूर तक थी, तो वो बताती हैं कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते रहते थे ना, लोग आते थे, बहसे करते थे, चर्चाएं होती रहती थी। आगे आइए पेज नंबर 96 पे। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। अब वो क्या कहती हैं, जो उनके पिताजी थे लेखिका के, उन्हें बहुत ही पसंद था ये ना, चर्चा करना आपस में, विभिन्न बातों को जानना, राजनीतिक मुद्दों को उठाना, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब बातों से देखना समझना। और इसीलिए जब ये लोग इनके घर पे आते थे तो लेखिका भी कभी उन्हें चाय या नाश्ता देने जाती थी तो उनके पिताजी चाहते थे कि अब वो वहीं बैठे, उन लोगों की बातें सुने, समझें और लेखिका को ज्ञान हो कि देश में कितना कुछ हो रहा है। अब वो लेखिका बताती है उस समय हो भी बहुत कुछ रहा था, क्योंकि सन 1942 में जब देश में कुछ आंदोलन चलाए गए थे गांधी जी द्वारा, तो देश में हर तरफ क्रांति का माहौल हो गया था, है ना। तो वो कहती है इन सब के बीच राजनीतिक पार्टियों की क्या नीतियां बन रही थी, उनमें आपस में विरोध हो रहे थे, उनमें मतभेद थे, ये सब मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन जो क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त थे, ऐसे लोगों के बारे में सुन के, शहीदों के बारे में सुन के एक सहज आकर्षण होता था, अपने आप ही मन आकर्षित होने लगता था उनके बारे में जानने का, उनके प्रति श्रद्धा होने लगती थी, उनकी कुर्बानियों से मन आक्रांत रहता था, यानी मन डर जाता था कि हमारे देश को और कितनी कुर्बानियां हमारे देश की आजादी के लिए हमें देनी पड़ेंगी। सो दसवीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव के, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही दसवीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कखरा सीखा, एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदलना, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहस की, तो दो साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। अब वो क्या बता रही हैं कि दसवीं कक्षा तक तो ऐसा था कि घर में जो भी बहसें होती थी ना, लोग आते थे, मुद्दे चलते थे, चर्चा होती थी, पिताजी के कहने पे वो सुन लेती थी, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था। फिर जहां पढ़ने की बात आती थी तो किताबें वो अक्सर पढ़ती थी, लेकिन उस समय चुनाव नहीं करती थी कि कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कि ये पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, ऐसा कोई चुनाव ना उनके मन में होता था, ना उन्हें करना आता था उस समय, और ना उन्हें लेखक की अहमियत पता होती थी कि ये किताब अगर इस लेखक ने लिखी है तो क्या इसकी क्या महत्ता है, वो सब उन्हें नहीं पता होता था। लेकिन सन 45 में जैसे ही वो दसवीं पास करके फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास में गई, तो वहां उन्हें हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से वो मिली और बताती हैं कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां उन्होंने कखरा सीखा, कखरा यानी क ख ग घ, यानी अपनी प्रारंभिक शिक्षा जहां शुरू की, वो एक साल पहले ही अब कॉलेज बन गया था और इसी साल वहां पे शीला अग्रवाल जी की नियुक्ति हुई थी। तो वो बताती हैं कि उनकी इसी शिक्षिका ने लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, है ना, साहित्य से उनका परिचय करवाया। पढ़ती तो लेखिका भी थी, लेकिन उस पढ़ लेने को चुनाव करके पढ़ना कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, खुद चुनकर किताबें देती थी, लेखिका के साथ बहस भी करती थी, चर्चाएं करती थी किताबों पे, तब लेखिका की जो समझ थी साहित्य को लेके वो विस्तृत होने लगी, फैलने लगी और फिर उसे ज्ञान हुआ कि दुनिया सिर्फ शरद और प्रेमचंद्र तक नहीं है, साहित्य की दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रेमचंद जन जन के लेखक हैं, उन्हें हर कोई जानता है, इसीलिए प्रेमचंद्र को लेखिका भी जानती थी। लेकिन अब उन्हें ज्ञान हुआ कि साहित्य में केवल शरद प्रेमचंद्र नहीं, बल्कि आगे जैनेन्द्र भी हैं, अज्ञेय भी हैं, यशपाल भी हैं, भगवती चरण वर्मा भी हैं, ऐसे करते करते अब ये दुनिया फैलती ही रही, यानी उन्हें बहुत से लेखकों के बारे में उन्होंने पढ़ा। आगे देखिए, उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पड़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उस झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणों के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्र लेखा पड़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। अब वो क्या कह रही हैं? जैनेन्द्र जी जो लिखते हैं वो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं, और इसी शैली ने, इसी तरीके ने लेखिका को बहुत आकर्षित किया। लेखिका को अच्छा लगा पढ़ना, उन्होंने उनका सुनीता उपन्यास पढ़ा जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अज्ञेय जी का शेखर एक जीवनी उपन्यास पढ़ा, लेकिन क्योंकि अज्ञेय जी की भाषा जो है वो थोड़ी सी कठिन है तो लेखिका कहती हैं उस समय वो मेरी समझ के सीमित दायरे में नहीं समा पाया, यानी पूरी तरह लेखिका उसे नहीं समझ पाई थी। कुछ सालों बाद उन्होंने अज्ञेय जी का नदी के द्वीप पढ़ा तो इस तरह वो आकर्षित हुई, इस तरह उनका मन उसमें रंग गया कि उन्हें अब दोबारा शेखर को पढ़ने की इच्छा है, और उन्हें दोबारा वो उपन्यास पढ़ा और इस बार अब उन्हें वो समझ में आ गया। अब वो क्या कह रही हैं कि वो युग मूल्यों के मंथन का था, है ना, कि समझना कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, नैतिक अनैतिक क्या है, सही गलत क्या है, और इनके आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहे थे कि क्या ये सच में सही है, और ये सही है, ये पुण्य का काम है तो हमें यही करना है, बल्कि इनको ध्वस्त किया जा रहा था, यानी अपनी नई धारणाएं भी लोग बना रहे थे, स्वतंत्र सोच रख रहे थे। और इसी संदर्भ में उन्होंने क्या पढ़ा, जैनेन्द्र का त्याग पत्र पढ़ा, भगवती बाबू का चित्र लेखा पढ़ा, और शीला अग्रवाल जो उनकी शिक्षिका थी उनके साथ वो बहस करते हुए, चर्चा करते हुए उस उम्र में, यानी उस समय जितना समझ सकती थी उन्होंने समझा, अपनी समझ को विकसित किया। आप भी अपने उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि अगर आपकी साहित्य में रुचि है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लेखकों को, उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहिए, और इसमें तो बहुत सारे नाम भी बीच बीच में आ रहे हैं जो लेखिका ने पढ़े हैं। अगर आप चाहें तो यही सारी कहानियां, उपन्यास भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी से के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला, प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था, और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। अब वो क्या बता रही हैं? जो शीला अग्रवाल उनकी शिक्षिका थी, उन्होंने साहित्य का दायरा तो बढ़ाया ही था, यानी साहित्य को समझने में तो मदद की ही थी, साथ ही जो घर की चार दीवारी में बैठ के वो अपनी पिताजी के राजनीतिक पार्टियों की चर्चाएं और बहस सुनती रहती थी, तो जो जानना समझना उन्होंने देश की स्थितियों को वहां शुरू किया था उसको भी और बेहतर तरीके से उनकी शिक्षिका ने समझाया, बल्कि समझाया ही नहीं, इन स्थितियों में खुद भी कैसे भाग लेना है वो उन्हें सिखाया। तो वो कहती हैं कि वैसे भी सन 46 और 47, है ना, जो हमारे आजादी के देश के वर्ष थे, उसमें वैसे भी कोई घर में कैसे बैठा रह सकता था, है ना, क्योंकि सुबह सुबह ही फेरियां निकलने शुरू हो जाती थी, रोज जुलूस निकलते थे, हड़तालें होती थी, हर चौक पे शहर में भाषण दिए जाते थे, तो ऐसे में कोई भी जो युवा थे देश के, सबके जोश और उत्साह के साथ सब उसमें भागीदारी लेना चाहते थे। लेकिन जो लेखिका है वो भी युवा थी, और जब शीला अग्रवाल की शिक्षिका ने उन्हें जोशीली बातें से उनका उत्साह बढ़ाया तो कह रही हैं कि मेरे रगों में जो खून बह रहा था वो लावा बढ़ने लगा था, मेरे खून में उबाल आ रहा था, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठू बैठू, जानू समझू, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना, और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। अब क्या बता रही है वो, क्या स्थिति हुई कि एक बवंडर शहर में मचा था तो एक घर में, है ना, यानी एक बाहर तूफान आ रखा था तो घर में भी आ रखा था, बाहर देश की क्रांति का, और घर में क्या था, पिताजी को लेके। क्यों? पिताजी को अब अच्छा नहीं लग रहा था उनकी जो बेटी है वो ऐसे भागीदारियां ऐसे विरोध प्रदर्शन में जुलूसों में भाग ले रही है। क्यों? पिताजी ने बस इतनी ही आजादी दी थी मन्नू को कि वो घर में बैठे, जो लोग आते हैं उनकी बातें सुने, उनके साथ उठ बैठ के देश की स्थिति को जाने समझने की कोशिश करें। लेकिन हाथ उठाकर सड़कों पर नारे लगाती, हड़तालें करवा रही और लड़कों के साथ सड़कों पर यहां वहां घूमने वाली लड़की उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और लेखिका को क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा था? किसी और की दी हुई आजादी में चलना, यानी वो अपने हिसाब से चलना चाहती थी, अपनी आजादी के दायरे खुद तय करना चाहती थी। फिर लेखिका कहती हैं, जब रगों में लहू की जगह लावा बहने लगे, यानी जब रगों में खून की जगह लावा बहे, ज्वालामुखी जैसी आग होने लगे, तो कोई भी जो आप पे रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, जो पाबंदियां होती हैं, जो निषेध लगाए जाते हैं, जो चीजें मना की जाती हैं, या किसी का डर होता है, वो कैसे खत्म होता है, ये तभी जाना। और तभी से जो अपने क्रोध से किसी को भी कपा देते, थरथरा देते थे, यानी अपने गुस्से से जो सबको डरा देते थे, ऐसे पिताजी से टक्कर लेने की उनमें हिम्मत आ गई। और वो कहती है कि ये सिलसिला तब से शुरू हुआ था और तब तक चला जब तक उन्होंने राजेंद्र से शादी की, यानी जब उनकी शादी हुई तब तक वो सिलसिला चला, क्योंकि लेखिका ने शादी अपनी इच्छा से, अपने मन से की। यश कामना बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, और उनके जीवन की दूरी थी यह सिद्धांत के व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर, चार बच्चे पहले भी पड़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे, लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई, माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वो तो खुश है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम तीन लड़कियों के इशारे पे चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट टपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहां तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहां बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। अब क्या होता है, वो बताती हैं कि यश कामना, यानी यश की कामना करना, प्रसिद्धि को पाने की इच्छा, प्रसिद्धि को पाने की लालच बल्कि कहें, कामना यानी इच्छा और लिप्सा यानी लालच, तो कहती है ये पिताजी की कमजोरी थी, दुर्बलता थी यानी कमजोरी थी। और उनके जीवन का आधार था कि कोई भी व्यक्ति हो उसे जीवन में विशिष्ट यानी खास बनकर रहना चाहिए, और इसीलिए कहीं कहीं कई बार मैं पिताजी के गुस्से से बच जाती थी, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि व्यक्ति को ऐसे जीना चाहिए कि उसका नाम हो, सम्मान हो, उसकी इज्जत हो हर जगह। ऐसे ही एक बार कॉलेज से उनके प्रिंसिपल का पत्र आया कि आप मुझसे आके मिलें और बताएं कि अनुशासन तोड़ने के संबंध में इस बच्ची के खिलाफ कार्यवाही क्यों ना की जाए। अब ऐसा पत्र पढ़ते ही पिताजी जो है उन्हें गुस्सा आ गया, अगर आपके भी स्कूल से अगर कोई पत्र जाए जिसमें लिखा हो कि आपके बच्चा अनुशासन में नहीं रहता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, आप आकर मिलें, तो आपके भी पिताजी को जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। ऐसे ही लेखिका के पिताजी को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि यह लड़की तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ेगी, पहले भी तो चार बच्चों को पढ़ाया, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया, इसने न जाने क्या क्या सोच के रखा है। अब वो गुस्से से गए, अब जो लेखिका थी वो डर गई कि वापस आके ना जाने क्या क्या कहेंगे, क्या क्या सहना पड़ेगा, तो वो जाके अपने पड़ोस की एक मित्र के घर जाके बैठ गई, वहीं जाके छुप गई और माता जी से कह आई कि माँ जब पिताजी आ जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए, मुझे तभी बुलाना। लेकिन थोड़ी देर बाद माँ आई और बोली कि पिताजी तो गुस्सा है ही नहीं, वो तो बहुत खुश हैं, घर चल। अब लेखिका को ये सुन के भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे। फिर भी वो माँ के कहने की वजह से डरते डरते घर गई। और जब घर गई तो देखा पिताजी सच में बहुत खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाह, तुमने तो सारे कॉलेज की लड़कियों पर बहुत रौब जमा रखा है ना। प्रिंसिपल कह रही थी कि जैसे तैसे लड़कियों को हम कक्षा में पढ़ने भेजते हैं, लेकिन तुम तीन लड़कियां इशारा कर दें तो सब लोग मैदान में आके नारे लगाने लगती हैं, विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं, तुम्हारी वजह से कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। तो पिताजी गुस्सा होने के बजाय उन्हें कहकर आए कि ये तो देश की पुकार है, देश की आजादी के लिए सब क्रांति करना चाहती हैं, इसे कोई कैसे रोक सकता है। वो कहती हैं बहुत गदगद होके, यानी बहुत खुश होके, पिताजी ये सब सुना रहे थे और मैं अवाक यानी आश्चर्यचकित होकर ये सब सुन रही थी। मुझे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये तो हकीकत थी, यानी ये तो सच था। एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, यानी मुख्य बाजार का चौराहे पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी। पेज नंबर 98 पर आ जाइए। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियन उसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़ताले करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वे। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? अब क्या हुआ वो बताती, एक घटना और बताती है लेखिका। क्या कि आजाद हिंद फौज के खिलाफ जो मुकदमा हुआ था उसका सिलसिला चल रहा था, और इसीलिए सारे कॉलेज, स्कूल, दुकान, हर जगह हड़तालें हो रही थी, है ना, धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, और जो लोग नहीं कर रहे थे हड़ताल, तो छात्रों का एक समूह जाके वहां हड़ताल करवा रहा था। और शाम को अजमेर शहर का एक पूरा विद्यार्थी वर्ग, यानी विद्यार्थियों का एक झुंड मिलके जाता है और शहर के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा होकर दुकानों में हड़ताले करवाता है, भाषणबाजी करता है, ये सब चल रहा है। तो पिताजी के एक दज्ञानुसी मित्र, यानी बहुत ही छोटी सोच रखने वाले एक मित्र जो है, वो आते हैं और क्या कहते हैं, उन्हें भड़काते हैं उनके पिताजी को कि मन्नू जो है उसकी मत मारी है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, लेकिन आपको क्या हुआ है? मैं मानता हूं कि आपने लड़कियों को आजादी दी है, लेकिन आप जरा देखिए तो वो कर क्या रही है, ऐसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ चल के हड़ताले कर रही है, हुड़दंग मचा रही है ना, तमाशे करते घूम रही है सड़कों पे। हमारे और आपके घर की लड़कियों को क्या ये सब शोभा देता है, मतलब अच्छा लगता है? उसे किसी मान मर्यादा, इज्जत का ख्याल ही नहीं रह गया है, लेकिन आपको है या नहीं है? ये देखिए इसी पेज पे, पेज नंबर 98 पे एक चित्र भी दिया गया है ना, छात्रों का एक वर्ग हाथ उठा उठा के बोर्ड ले लेके नारे लगा रहा है, हड़ताले करवा रहा है ना। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं, बंद करो अब इस मन्नू को घर से बाहर निकलना। अब क्या हुआ, जब उनके दोस्त ये सब कह के चले गए, यानी आग लगाकर चले गए, तो पिताजी को पूरे दिन गुस्सा आता रहा। उन्हें ये लगा कि बाहर के लोग आके अब मुझ पे थू थू कर रहे हैं, यानी मुझे सुना के जा रहे हैं, मेरी बेइज्जती करके जा रहे हैं। अब इस मन्नू को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाएगा, जितनी इसे आजादी दी थी ये गलत फायदा उठा रही है, इसे अब घर से बाहर निकलने ही नहीं दूंगा। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मनु, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसते रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, यू हैव मिस्ड समथिंग, और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अब क्या होता है वो बताती है, ये इन सबसे बेखबर, यानी कौन मेरे पीछे आके, कौन सा दोस्त क्या कह गया है, मुझे तो पता नहीं था, है ना। लेखिका कहती मैं रात होने के समय घर आई तो पिताजी के बहुत ही अंतरंग, यानी बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे मित्र रहे होंगे, अजमेर के प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी, वो बैठे थे। तो जैसे ही मैं घर में आई उन्होंने मेरा स्वागत किया, बहुत खुश हुए मुझे देख के कि मनु आओ, मैंने तो तुम्हारा भाषण अभी अभी चौपड़ पे, यानी चौराहे पे सुना है, और इसीलिए मैं भंडारी जी को बधाई देने आया कि तुम कितना अच्छा बोलती हो, देश के लिए कितना सब कुछ कर रही हो। और फिर उन्होंने पिताजी से कहा कि मुझे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यानी मुझे मनु पे गर्व है, यू हैव मिस्ड समथिंग, भंडारी जी आपने कुछ खो दिया। इतनी आप क्या घर में घुसे रहते हो, आप क्यों नहीं आप इसका भाषण सुनने आए, इसने कितना अच्छा बोला, आपने तो कुछ मिस कर दिया, नहीं आपने कुछ खो दिया। और जब ऐसी धुआंधार तारीफें हो रही थी तो पिताजी जो है उनका गुस्सा शांत होने लगा और कहीं ना कहीं उन्हें वापस गर्व हो रहा था अपनी बेटी पे। और जैसे ही लेखिका अंदर गई तो माँ ने बताया दोपहर वाली बात कि कैसे एक दूसरे मित्र ने आके उन्हें भड़काया था और वो तब गुस्सा हो गए थे। तो यह सब सुन के अब मन्नू को राहत की सांस आई, यानी उन्होंने चैन की सांस ली कि चलो शुक्र है अब पिताजी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अब पेज नंबर 99 पे देखिए, एक बालिका खड़ी है चौराहे पे और भाषण दे रही है। तो ये चित्र उस समय का दर्शाया गया है कि कैसे मनु भंडारी ने भाषण दिया होगा। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे वे, एक ओर विशिष्ट बनने बनाने की प्रबल आलसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? अब वो क्या कहती हैं, पीछे मुड़कर देखती हूँ, यानी जब वो पुराना समय याद करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि उस समय मेरी उम्र ही क्या थी, है ना, मात्र 15-16 साल की मैं रही होंगी तो मैंने उस समय क्या ही भाषण दिया होगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने, यानी पापा के मित्र ने जो मेरी तारीफ की, वो उनका स्नेह था, उनका मेरे लिए प्यार था जो मेरी तारीफ बन के निकल रहा था। या फिर ये हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में इतनी भीड़ के बीच खड़े होकर एक चौराहे पे अकेली लड़की एक भाषण दे रही है, धुआंधार बोले जा रही है, तो यही केवल काबिले तारीफ बात रही और इसी बात से वो प्रभावित हो गए हैं। अब वो पिताजी के बारे में सोचती हैं, कहती हैं वो कितने अंतर विरोधों के बीच जीते थे, यानी उनके मन में दो दो सोच चलती थी, एक और तो वे विशिष्ट बनना चाहते थे, यानी खास बनना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वो उनके बच्चे उनके परिवार विशिष्ट रहे, सबसे अलग रहे, और दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति सजगता भी थी कि समाज में लोग उन्हें कुछ कहें ना। लेकिन पिताजी को यह क्यों नहीं समझ में आता था, इस बात का एहसास क्यों नहीं था कि इन दोनों का रास्ता टकराहट का है, यानी ये दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती हैं। अगर आप दुनिया से हटकर कुछ करेंगे तो लोग तो कहेंगे ही ना, और अगर आपने लोगों के कहने की परवाह कर ली तो आप कुछ विशिष्ट कुछ अलग कर ही नहीं सकते हैं, तो ये दोनों चीजें तो आपको नहीं मिल सकती है। ये चीज पिताजी क्यों नहीं समझते थे? आगे आइए पेज नंबर 100 पे। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसीलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। देखिए कितने खुशनसीब रहे होंगे वो लोग जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देश की आजादी देखी, है ना। तो लेखिका क्या कहती हैं कि 1947 में मई के महीने में जो इनकी शिक्षिका थी शीला अग्रवाल, कॉलेज वालों ने उन्हें नोटिस दे दिया था कि आप लड़कियों को भड़काती हैं, कॉलेज का अनुशासन बिगड़ता है, इसीलिए आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। और उन्हें पता था अगर ये नोटिस की बात लड़कियों को पता चलेगी तो ये हुड़दंग मचाएंगी, तमाशे करेंगी, विरोध प्रदर्शन होंगे, इसीलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर दी। और जो 2-3 छात्राएं थी मनु भंडारी और उनकी सहेलियां जो ज्यादा सक्रिय रहती थी ऐसी चीजों में, उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया, यानी उनका आना बंद कर दिया, क्योंकि मई जून में छुट्टियां होती हैं, तब नोटिस पकड़ा दिया गया और जुलाई में क्लासेस ही नहीं खोली। तो वो कहती हैं कि हुड़दंग तो बाहर रहकर भी बहुत मचाया, यानी बाहर रहकर भी इतना विरोध प्रदर्शन किया कि कॉलेज वाले ज्यादा दिन तक क्लासेस बंद नहीं रख पाए और हमारा प्रवेश भी नहीं रोक पाए। उन्हें आखिर अगस्त के महीने में कॉलेज खोलना पड़ा, हमारी थर्ड ईयर की क्लासेस शुरू करवानी पड़ी और अब हमारा प्रवेश नहीं रोका जा सकता था। तो इस जीत पे हमें बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन इससे भी ज्यादा सामने खड़ी चिर प्रतीक्षित, यानी बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा की गई हो, बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार रहा हो, ऐसी खुशी सामने खड़ी थी जो हमारी जीत की खुशी से बहुत बड़ी थी। और ये क्या थी? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि, यानी पूरे शताब्दी क्या होता है, 100 साल का समय, पूरी सदी में जो सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी खुशी जो हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्राप्त हुई थी, वो क्या था, 15 अगस्त 1947, यानी भारत की आजादी। हमारा देश कब आजाद हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 में। तो कहती हैं इस सब के बाद देश को जब आजादी मिली तो ये सबसे बड़ी खुशी थी और हम बाकी सारी चीजें इसके आगे भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे मन्नु भंडारी जी का ये जो कहानी थी, एक कहानी है भी उनकी आत्मकथा की शैली में लिखी गई, ये पूरी होती है अगले ऑडियो में, हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।